कुछ समाचारों में, स्वदेशी समुदायों में कोविड आपदा से बचने के लिए मध्य ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन का आह्वान। पर्यावरण समूह द्वारा फेडरल सरकार के ग्रेट बैरियर रीफ के लिए फंडिंग संकल्प की आलोचना और सकुरूज कोच ग्रैम आर्नल्ड कोविड 19 से मुक्त होने के बाद विश्व कप क्वालिफायर के लिए वापसी करेंगे। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। नॉर्दर्न टेरिटरी में शीर्ष इंडिजिनस बॉडीज ने मुख्यमंत्री को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए मध्य ऑस्ट्रेलिया में तत्काल लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। इन समूहों में सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कांग्रेस, सेंट्रल लैंड काउंसिल और एबोरिजिनल मेडिकल सर्विसेज अलायंस नॉर्दर्न टेरिटरी शामिल है। उनका कहना है कि एलिस स्प्रिंग और मध्य ऑस्ट्रेलिया में मूल समुदायों में वायरस नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से फैल रहा है। उन्होंने टेरिटरी और फेडरल सरकार पर स्वदेशी समुदायों में कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूर्व व्यवस्थित योजनाओं को लागू कर पाने में विनाशकारी रूप में विफल रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया है। जिन विफलताओं को उन्होंने सूचीबद्ध किया है, उसमें नववर्ष की पूर्व संध्या पर उचित रूप से सभाओं का प्रबंधन नहीं करना, जो अब सुपर स्प्रेडर इवेंट बन गए हैं, और सकारात्मक मामलों को भीड़भाड़ वाले आवास से स्थानांतरित नहीं करना शामिल है। उनका कहना है कि लॉकडाउन ही इस ग्राफ को समतल करने और कमजोर या बिना टीकाकरण वाले लोगों को गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाने का आखिरी मौका है। विक्टोरिया में कोविड 19 से 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अस्पताल में अब 988 लोग हैं, जबकि 12,755 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले ने लोगों को अपना बूस्टर शॉट लेने की अपील की, ताकि कोविड 19 के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सके।
Please, again, there are multiple opportunities in the state run clinics, in the GP and pharmacy primary care provisions to get that really important dose. As we've seen in the data released over recent days, it is so important to protect you. To protect your family and to keep you out of hospital and so protect our healthcare system.
ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा नियामक द्वारा किशोरों के लिए तीसरे शॉट को अनंतम मंजूरी दिए जाने के बाद 16 और 17 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन लोगों से कोविड 19 का बूस्टर शॉट लेने का आग्रह किया जा रहा है। थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सलाह दी है कि 16 और 17 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की खुराक उतनी ही दी जाएगी जितनी वयस्कों में दी जाती है। अब तक केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग ही तीसरी खुराक लेने के पात्र थे। ऑस्ट्रेलिया की चीफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑफिसर एलिसन मैकमिलन का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और इसे फैला रहे हैं।
They're very mobile, they interact very frequently. We all know the challenges that we face with getting our younger people to wear masks, to follow the sort of things we ask of them with social distancing and all of those requirements. So, yes, we are seeing cases in younger people.
New South Wales ने आज पहले दर्ज की गई 35 वायरस मौतों के अलावा वृद्ध देखभाल सुविधाओं में 35 और कोविड 19 मृत्युओं की सूचना दी है। न्यू साउथ वेल्स में 31 दिसंबर से अब तक वृद्ध देखभाल में 207 कोविड से ग्रस्त मौतों की सूचना मिली है। फेडरल सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि न्यू साउथ वेल्स में 515 आवासीय वृद्ध देखभाल सुविधाओं में ओमिक्रॉन का प्रकोप है, जिसमें 3,859 निवासी संक्रमित हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट का कहना है कि 2 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक दक्षिण पश्चिमी सिडनी में ये अतिरिक्त वृद्ध देखभाल मौतें हुईं।
You can imagine that this has been a very busy time for southwestern Sydney when they've experiencing quite a number of cases of COVID and we've had a number of outbreaks in aged care facilities. And so whilst the local health district has been working with the Commonwealth and the aged care facilities to support and focus on the response, There was a delay in reporting those deaths to the ministry for the purposes of the statewide reporting.
न्यू साउथ वेल्स के अस्पताल में कोरोना वायरस वाले 2,737 लोग हैं और राज्य में 13,333 नए संक्रमण भी रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच सिडनी की एक महिला का कहना है कि वो इस बात से नाराज है कि उसके पिता कोविड-19 का बूस्टर शॉट नहीं ले पाए और वो वृद्ध देखभाल में वायरस की चपेट में आ गए। मेलिंडा होम्स के पिता गार्थ लॉकडाउन नर्सिंग होम में थे। जनवरी की शुरुआत में वहां वो वायरस से संक्रमित हुए और एक सप्ताह बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। गारत को अप्रैल में पूरी तरह से टीका लगाया गया था, लेकिन उन्हें अपना तीसरा शॉट लेने के लिए कहीं और ले जाने की अनुमति नहीं थी। वृद्ध देखभाल सेवा मंत्री रिचर्ड कॉलबेक ने इस खुलासे के बाद एक कोविड सीनेट समिति की सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसी दिन अपने खेल पोर्टफोलियो की ड्यूटी के लिए होबार्ट में एशेस क्रिकेट मैच पर वो गए। मेलिंडा होम्स का कहना है कि वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि सेनेटर कॉलबेक एक कोविड संकट के दौरान क्रिकेट को प्राथमिकता क्यों देंगे।
Not to go to a meeting about COVID when you're the aged care minister, when it's a matter of life and death for those people in aged care, the management of COVID, and you want to make sure that you're doing the best thing, the best. We expect our ministers to help us to manage it as well as possible, and we just don't understand why there weren't boosters and why the cricket was more important than managing those issues and looking after the health of people in aged care.
ग्रीन पीस का कहना है कि फेडरल सरकार को जलवायु परिवर्तन की मूलभूत समस्या को संबोधित करना चाहिए जो ग्रेट बैरियर रीफ को नष्ट कर रहा है, न कि इसे ठीक करने के लिए धन आवंटित किया जाए। मॉरिसन सरकार इस विश्व विरासत सूचीबद्ध ग्रेट बैरियर रीफ पर एक दशक में अतिरिक्त $1 बिलियन खर्च करेगी, जिसमें पोषक तत्व और कीटनाशकों की कमी को कम करना और स्टार फिश के कांटों से निपटना शामिल है। रीफ अनुकूलन के लिए अनुसंधान और प्रजातियों के संरक्षण आदि पर भी ये धन खर्च होगा। ग्रीन पीस के मार्टिन जार्विन का कहना है कि सरकार रीफ के पतन के प्रमुख कारण को अनदेखा कर रही है, जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला जलवायु परिवर्तन है।
The best way for the Morrison government to safeguard the future of the reef is to rapidly reduce emissions. Now, in a developed economy like Australia, that means replacing all of our coal-burning power stations with renewable energy by 2030. This is the timeline that the UN and the International Energy Agency are calling for if we are to get to net zero emissions by 2050.
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,51,000 नए केस दर्ज हुए और 627 मौतों को दर्ज किया गया है। और आज से एयर इंडिया के विमान टाटा ग्रुप के तहत उड़ान भरेंगे। जैसा कि विदित है, एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने 1932 में की थी और 1953 में विमानन कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपने से पहले उसकी सहायक कंपनी AIAHL में रखे गए 61,000 करोड़ रुपए के पुराने कर्ज और अन्य देनदारियों का निपटारा किया है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 52.80 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, सॉकरूज कोच ग्रैम आर्नल्ड ने कोविड-19 के लिए अब नकारात्मक परीक्षण किया है और वो ओमान के खिलाफ टीम के विश्व कप क्वालिफायर के लिए लौटने के लिए तैयार हैं। श्री ऑर्नर ने पिछले सप्ताह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और गुरुवार को वियतनाम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत में शामिल नहीं हो पाए थे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बहुत अधिक गर्मी रहेगी, धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। मेलबर्न में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री और डार्विन में बौछारे रहेंगी। तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।